Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. सचमुच जब ओम शांति भवन में ओम शांति का आवाज निकलता है तो कई बातें याद आती है। बाप दादा के मुलाकात, दादी जानकी की, सभी के कितने सारे संगठन हुए हैं इस ओम शांति भवन में। ओम शांति के ही निमित्त, और आज विश्व भर में शांति स्थापन करने वाले हमारे मीठे प्यारे बाप दादा, जिनको हम कहते हैं विश्व परिवर्तक या विश्व कल्याणकारी, आज अपनी मीठी वाणी में सुना रहे हैं कि ये जो कार्य है शांति स्थापन करने का, विश्व भर में कल्याण करने का, वो सिर्फ बाप का है। लेकिन साथ साथ बाबा हमें भी आगे रख रहे हैं कि मैं तो तुम बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, भले बच्चों के लिए आया हूं लेकिन फिर भी बच्चों के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। और अव्यक्त बाप दादा भी कई बार कहते हैं मुझे विश्व कल्याणकारी या विश्व परिवर्तक जो टाइटल मिला है वो मिला है तुम बच्चों की वजह से, खास करके डबल विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं मेरा ये टाइटल तुम प्रूव करते हो, साबित करते हो। तो आज की मुरली में कई बातें ऐसे हैं बाबा, हमको चैलेंज तो नहीं कहेंगे लेकिन याद दिला रहे हैं कि मैं जिन जिन बातों के लिए आया हूं और मेरा कर्तव्य है वो तुम बच्चों का भी है, इसलिए हमें भी टाइटल कौन सा बाबा देंगे, खुदाई खिदमतगार। कितना सुंदर टाइटल आज का टाइटल है, जो जो खुदा अपने बच्चों के अपनी रचना की खिदमत में करने के लिए आए हैं वही खिदमत आपको भी करना है। शांति की स्थापना तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन उसके लिए भी बहुत छोटा करके बाबा हमको बताते हैं ज्ञान के रूप में क्या क्या समझाओ। वैसे दुनिया भर में आप आज देखेंगे तो कई बातों की वजह से अशांति फैली हुई है। एक तो है लड़ाई झगड़े विश्व भर में, तो हम कोई हथियार वाले तो नहीं हैं बैठे हुए लेकिन फिर भी हम उसी खिदमत में हैं जो बाबा खिदमत में हैं, लड़ाई झगड़े मिटाने वाले। तो कैसे मालूम हो कि हम वो कर्तव्य पूरी रीति से कर भी रहे हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे अंदर में अभी तक भी कोई ऐसा तो नहीं है, किसी के प्रति संघर्ष हो, दुविधा हो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे बाहरी रूप में लेकिन अंदर तो चलता होगा, तो उन सबको भी मिटाना है। दूसरा भी बाबा कह रहे हैं कि मैं रोना बंद करने आया हूं, नई दुनिया जो मैं स्थापन करता हूं सुख शांति वाला उसमें रोने का नाम नहीं होगा। तो क्या हम खुद भी रोने से बिल्कुल फ्री अपने आप ताकि दूसरों को फ्री कर सके, राइट। और बाबा कहते हैं ना, मन का रोना वो भी बहुत बड़ा रोना होता है। तो कई बातों की चेकिंग करने के लिए बाबा की आज की मुरली एक आईना बन रहा है, और हम सुनेंगे 8 फरवरी की मुरली आज। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। खुदाई खिदमतगार सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। जहां जहां भी, जिस जिस देश में भी किसी का मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, कोई भी आफतें आती है, तो बाहर से लोग मंगाते हैं सल्वेशन आर्मी। तो हम क्या करें, पहुंच जाएं। आजकल तो सकाश के प्रति बहुतों के संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम कौन हो? सच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। होलसेल शांति ना बाबा कहते हैं, थोड़ा बहुत क्या करे, राइट। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है, और बाप ही आकर वो वर्षा देते हैं। तो तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है। सुना है किसी ने देखा हुआ हो, अपने आत्मा को देखा हुआ हो? देखी नहीं है। सिर्फ इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा, माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। न अपने को, न बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना तक भी कहते हैं। आत्मा है, शरीर में है, दूसरा शरीर लेगी, इतना तक भी पता है। परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, ये तो आप सबको मालूम होगा कि भारत में तो बहुत मान्यता है कि जानवर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में कोई फर्क नहीं, जानवर भी बन सकते, कुछ भी बन सकते, कोई भी योनि में जा सकते, इतना भी मानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भले कहते सब हैं लेकिन सचमुच क्या है आत्मा नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते तब बाप को जानते। पहले तो आत्मा को सिर्फ पहले यथार्थ रीति जानते तब बाप को जानते। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सेल्फ रियलाइज करना, सेल्फ को पहले जानना, रियलाइज करना, फिर परमात्मा बाप को रियलाइज कर सकती है आत्मा। ऐसे भी कहते हैं ना, स्थूल में भी छोटे बच्चे का जब होता है कि सेल्फ इमेज जब पैदा होता है, पहले पहले तो अपने आप को जानता है, खुद का नाम। तो बाबा कहते हैं इसको फिर सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगर तो कोई करा नहीं सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहां से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। और सभी को अनुभव होगा कि जब भी आत्मा की बात निकलती है तो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं लोग, नहीं? क्या है, कैसी आत्मा है, कहां से आती है, फिर क्या होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब जानने वाले कोई नहीं, इसलिए अभी तक तो अनजान ही कहेंगे। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया। भले कोई भी बड़े आदमी हो, लक्ष्मी नारायण हो, देवी देवता हो, लेकिन उन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया ये कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण के लिए खास जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिक बना लिया कैसे और फिर कहां गए, कुछ भी नहीं जानते। लिया कैसे और फिर कहां गए, कुछ भी नहीं जानते। सोचा किसी ने उसी के बारे में, मूर्तियां तो कई देखी होगी, मंदिर में तो बहुत गए होंगे, लेकिन बुद्धि नहीं चलते पूछने की, राइट? तो अब तुम सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, छोटे बच्चे को कहो तुमको बैरिस्टर बनना है तो कहेगा हाँ बनेंगे, लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व है उसको तो कुछ पता नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं, बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कोई किताब है? क्या कहेंगे, कौन सी पढ़ाई है, कौन सा नॉलेज है जिसके जिसको पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये पद पाया। बाबा कहते इनका किताब फिर है गीता। अगर गीता पुस्तक बतानी हो तो कहेंगे गीता, लेकिन उसमें भी सार, ये भी किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? ये कोई नहीं जानते। मुझे याद करो किसने कहा, राजयोग किसने सिखाया, ये नहीं जानते। तो फिर क्या जाना, भले इतने बड़े पुस्तक भी पढ़े लेकिन कोई जानते नहीं, ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल दिया है ना। शिव जयंती भी मनाते हैं और वो ही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण कहो, श्री कृष्ण कहो, कहेंगे स्वर्ग, लेकिन उस स्वर्ग को कोई भी जानते नहीं, कब था, कैसे बना। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई, राइट? श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, बिल्कुल शांतमय राज्य चलता है राइट वहां पर। लेकिन श्री कृष्ण के राज्य में कंस और राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। ये किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं? बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, लाइट नहीं है देखने का, जानने का, तो अंधियारा कहेंगे ना। ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। आजकल तो बहुत चलता है ना, लाइट में आ जाओ, लाइट 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 बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो लाइट कौन सा, ज्ञान का लाइट है, रोशनी है, वो भी नहीं। अब सोजरा करने वाला कौन, वो है बाप। सोजरा करने वाला, अंधियारे से सोजरे में लाने वाला कौन, वो है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। भले इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं लेकिन सचमुच जो बात है वो उसको नहीं जानते तो उसको क्या कहेंगे, रोशनी नहीं है ना, अंधियारा है ना, तो उसको रात कहेंगे। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी ना। पौना हिस्सा पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे, पहले तब तो पता नहीं होता है, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं ना, ये कितने साल चलेगा, ये कितना साल चलेगा, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पौना पूरा हुआ तो उनको पुराना कहेंगे। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सदगति करते हैं और सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। सर्व का बाप है, सर्व के सद्गति करते हैं और सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं, सभी को ले जाते हैं, इसलिए तो बाबा ने कहा यहां पर कहां से तुमको शांति मिलेगी, मुक्ति धाम में शांति मिलेगी, शांति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, देख रहे हैं ना सभी अपनी अपनी गद्दियां, आलीशान होगी, बाकी सबको मुक्ति धाम तो ले जाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में ये अनेक धर्म है नहीं, उस समय वो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। कौन सी आत्माएं, उपद्रव मचाने वाली आत्माएं, वो सब कहाँ है? मुक्तिधाम में है, निराकारी दुनिया में रहती है। और कौन यहाँ पर है? सिर्फ जो पड़े हुए हैं, सुख शांति के वर्षा ली हुई है, वो है ना वहां पर। तो सत्युग में उस समय वो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। ये तो तुम जानते हो कि आकाश पोलार है, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है, पांच तत्व को भी भगवान मान लेते हैं, सब के तरफ भगवान ही भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं, आत्मा का सुनाया, शरीर का सुनाया, परमात्मा का सुनाया, फिर पांच तत्व का सुना रहे हैं। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। बाप ने अपना तो बना लिया, वर्षा लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए लायकपन भी चाहिए, राइट? तो उसके लिए बाबा फिर हमको पढ़ाते हैं, रूहानी टीचर बन रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पार्ट बजाने। एक संबंध का कनेक्शन दूसरे संबंध से है, बाप का फिर टीचर से, टीचर का फिर सतगुरु से। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो, और फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं क्या करो, फिर से पहले आने के लिए क्या करो? अभी कहते हैं दौड़ी लगाओ। अभी दौड़ी लगाओ, वहां पहले वाली बातें याद करो, अच्छी तरह से याद करो। दौड़ी लगाओ माना कि रेस करो, याद का रेस ना होता है हमारा। अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाबा हमको पूछ रहे हैं, सारे विश्व भर में पढ़ाने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊं? कौन पढ़ाएगा? तुमको पढ़ाना है। बाबा कहते नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, क्या कहेंगे बाबा को? मददगार बनेंगे पढ़ाने में, सभी करते भी होंगे, मददगार हैं भी सही, लेकिन कैसे बाबा हमको इंस्पायर करते हैं? देखो, खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना, और अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन चाहिए उनको, यहां से दूर प्लेन भर भर के, सब कपड़े भर भर के, खाना भर भर के, लोग भर भर के जाते हैं ना आर्मी, कौन सी सेल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए, किसी न किसी रूप में अशांत हुई है आत्माएं, तो शांति की सेल्वेशन चाहिए। बाकी वो कोई शांति की सेल्वेशन थोड़ी देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? थोड़ा चांस मिला ना, शांति अगर मांग रहे हैं तो सच्ची शांति क्या होती है, कहाँ आती है, कहाँ होती है, थोड़ा समझाने का वो मार्जिन है, राइट? तो बाप कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। वो भी अगर सुना कर, अगर आप अनुभव भी कराओ साथ साथ में, तो आत्मा को कितना अच्छा लगेगा। जो आत्मा इतनी अशांत है, चारों तरफ अशांति का वातावरण है, ऐसे में अगर आप खुद मूल वतन को याद करो, आत्मा के स्थान को याद करो, घर को याद करो, और उस अवस्था में अगर सुनाओ उनको भी थोड़ा बहुत अनुभव होए तो कितना वो थैंक्स करेंगे, राइट। तो बाबा कहते हैं शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है, और बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, शांति भी वर्षे के रूप में हक है हमारा। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें। हर एक का समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्योंकि समझाने वाले नंबर वार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे। अरे तुम भी तो ब्राह्मण हो ना, तो बाबा फलाने हमारे से होशियार है, तो होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। प्रैक्टिकल की बात बाबा सुनाते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि, जैसे जैसे पढ़ाई, जैसे जैसे अभ्यास अनुभव, उनका असर पड़ता है दूसरों के ऊपर, तो नंबर तो होगा ही, नंबर वार तो है ना। जब इम्तिहान के रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। साक्षात्कार किसका होगा? खुद का। जो हम खुद अब बाबा कभी कभी कहते हैं ना, ठगी मत करो अपने साथ, अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझो। कई बातें हैं जो रियलाइज नहीं होती है, तो इसलिए एंड में सब समझ में आएगा कि हमने ये नहीं माना बाबा का श्रीमत, या कैसा हमारा पुरुषार्थ था। तो आपे ही तुमको साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। विकर्म तो बहुत बड़ी बात, लेकिन उसके पहले क्या होता है, विकर्म के पहले देहधारी से कोई लागत नहीं रखो, लगाव नहीं रखो। ये तो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, पांच तत्वों की थोड़ी ही पूजा करनी है व याद करना है। भले इन आंखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। साथ साथ में बाबा युक्ति भी बताते जाते हैं, राइट। भले शरीर दिखाई तो देगा, देखना भी पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, लेन देन भी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या याद रखो, बाप को याद रखो। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। नॉलेज वाले को रोशनी जो मिली है वो क्या सोचेंगे, याद करेंगे, और जिनको रोशनी नहीं है वो क्या करेंगे। कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में जाएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ये भी समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। किसी ने देखा भी होगा दिव्य दृष्टि से, लेकिन मुख्य बात है समझने की। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव, मध्याजी भाव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। मन मना भाव, बाप को याद करो, मध्याजी भाव, विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारा है डेइटिज्म, तुम जो डेइटी धर्म के हो तुमको सतयुग में जाना है। तुम्हारा है डेइटिज्म, ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, डेइटिज्म भी तो धर्म है, मनुष्य का धर्म है। लेकिन मूल वतन में तो कोई धर्म नहीं है, मनुष्य नहीं है। यहां है मनुष्य सृष्टि, मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। तो ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं। डेटिज्म वाले भारतवासी वो इतना कॉन्ट्रास्ट में आते हैं, पहले बिल्कुल ऊंच डेटी धर्म के, फिर बिल्कुल नीच शूद्र धर्म के। तो ये भी बाबा कहते हैं सिर्फ भारतवासियों के लिए इतना कॉन्ट्रास्ट पड़ता है। और भी गिरते हैं लेकिन उनका ऐसा नाम नहीं बदलता, ब्राह्मण नहीं बनते, फिर शूद्र भी नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं तो ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी, सूर्य वंशी, इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़ी सतो प्रधान बन जाएगा। पुराना बनने के समय दोनों साथ साथ चलते हैं, तमो प्रधान तक पहुंचते हैं, लेकिन सतो प्रधान जब हम बनते हैं तो बाबा कहते हैं सारा झाड़ सतो प्रधान नहीं बनेगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना, फिर वैश्य, शूद्रवंशी आदि आदि, ये सब बातें हैं नई। इतना डिटेल में कौन जानता था पहले? जानते थे, कोई पुस्तक में लिखा था, किसी ने समझाया था हमको। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा की जो पूरी पूरी कहानी है मैं आकर सुनाता हूं। तो हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूं, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान रहता नहीं। जब पूरा बन जाते हो तो फिर ये ज्ञान रहता नहीं, नाम निशान नहीं रहता। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है और तुम हो सोजरे में। तुम अभी कौन से अंधियारे में नहीं हो लेकिन सोजरे में हो। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे बाबा कहते ये तो बना बनाया खेल है। ज्ञान कहता है कि ये बना बनाया खेल है, मोक्ष नहीं मिल सकता, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या? ये भी ज्ञान है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी फिर तीसरा लेगी, इसमें चिंता क्या करे? आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया, रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो। अगर मिलनी वाली हो चीज वापस रोने से तो रो, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो होना नहीं है। छोटे बच्चे भी वही करते हैं ना, रो करके अपना चीज वापस ले लेते हैं, जो जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं, उनका फिर आदत बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं रोते क्यों हो, वापस चीज तो मिलनी नहीं है। वो तो बिल्कुल बेसमझ हो गए ना, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा? अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, मोह रुलाता है ना, इसलिए अभी तुमको मोहजीत बनना है। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। आगे से हमको ज्ञान है कि ये कब्रिस्तान है, फिर इससे मोह क्या रखना? आज बच्चा है कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप के पाग उतारने में भी देरी नहीं करे। सिर्फ मरने की बात नहीं लेकिन होवे भी, और फिर भी एकदम बिगड़ जाए, उसके सामने आ जाए, आग उतार दे, माना कि उसके खिलाफ हो जाए, बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। बाप भी है तो उसको भी बाप नहीं मानते, मान नहीं देते, निधन की दुनिया। जैसे बाबा कहते कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धनका बनाने आते हैं, शिक्षा देने, धनका बनाने, वर्षा देने आते हैं। दुनिया की हालत क्यों ऐसी हुई है, कैसी पालना मिलती है ना, छोटे बच्चों को भी कैसी पालना मिलती है, एजुकेशन भी कैसी मिलती है, कल्चर भी कौन सा पड़ा है। तो इसलिए हालत जब देखते हैं बाबा तो धनका बनाने आते हैं, माना कि सिर्फ धन दौलत की बात नहीं लेकिन अपने व्यवहार की बात, अपने वैल्यूज की बात है। बाबा कहते हैं बाप ही आकर सबको धनका बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं, हमारे पास ये नहीं तुम्हारे पास बहुत है, यही मारा मारी चलती है ना सारे दुनिया में। सत्युग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते और फिर जय जयकार हो जाती है। सब झगड़े मिट जाते हैं तो क्या होती है, जय जयकार हो जाती है, सबके पास सब कुछ मिल जाता है, वो ही रह जाते हैं ना सत्युग में। यहां मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं, इनको दासी भी इनको समझते हैं, इसलिए बाबा ने उठाया है दासियों को। हथियाला बांधते समय कहते हैं ना तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है, पहले मिस्टर फिर मिसेस। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सके, तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। बाबा को कितना सूक्ष्म सब बातों का पता होता है कि कैसे कैसे बिगिनिंग में क्या होना था, कैसे उठाना है, किसको उठाना है, कायदे सर बाबा ने सब कार्य अपना किया तभी यहाँ आके पहुंचे हैं, राइट। ओम शांति भवन में, शांति वन में, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सके, तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोह जीत राजा की एक कथा है, मोह के ऊपर जीत पाने का भी महत्व बाबा समझा रहे हैं। वो सब बनाई हुई कहानियां है, सत्युग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है कि अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है तो खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहां तो बल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहां ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। मोह कहेंगे ना इसको, तो लागत जो बाबा ने कहा पहले, लागत नहीं लगाओ किसी की शरीर से भी, अपने से भी नहीं, तो रोएंगे क्यों, क्योंकि लागत है, लगाव है। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहां रोने का नाम नहीं, वहां तो खुशी ही खुशी रहती है, तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। क्या कहें बाबा को, बाबा अभी तो पहुंचे नहीं है। बाबा तो कहते अभी से खुशी ही खुशी रहनी चाहिए, पहुंचने की खुशी, अभी पहुंचे कि पहुंचे, राइट, ये अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते बेहद की खुशी रहनी चाहिए, अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, तुम ही पूज्य देवता थे फिर पुजारी बनते हो, भगवान थोड़ी आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनेंगे। अभी अगर सुनते हैं तो हंसी आती है, राइट, भगवान आप ही पूज्य आप ही पुजारी, लेकिन पहले कहते थे जरूर, अगर वो भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। महिमा भी तब निकले जबकि उनका ज्ञान हमारे तक पहुंचे और हम हमारी सदगति होवे ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या, ऐसे ही चुप चुप तो नहीं रहेंगे ना, लेकिन ज्ञान जब प्रत्यक्ष होगा उसको अमल में लाएंगे तब तो सदगति कहेंगे। तो बाबा कहेंगे ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। और होता भी है जरूर, अलग अलग धर्म वाले आकर के झाड़ देखते हैं, हम यहाँ पर हैं, फिर स्वर्ग में तो नहीं है, लेकिन फिर मान भी लेते हैं। ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए, चक्र का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, त्रिमूर्ति का ज्ञान, ये सिद्ध हो जाए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि राइट है या मैं राइट हूं। जज करो कि ये शास्त्र आदि राइट है। 84 उवनियों में जाते हो या 84 जन्म तुम लेते हो, ब्राह्मण से लेकर के नीच तक शूद्र तुम बनते हो, क्या राइट है। सच्ची सत्य नारायण की कथा तो मैं सुनाता हूं। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। सत्य नारायण की कथा इसलिए है क्योंकि सत्य बाप द्वारा हम सचमुच नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। पहली मुख्य बात बाबा कहते हैं तीनों का संबंध एक के साथ होवे, ये कभी हो नहीं सकता, मनुष्य के लिए नहीं कह सकते। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? यहां तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। प्रैक्टिकल में देखते हैं कि तुमको बच्चा बनाया पहले तो, फिर पढ़ाया और साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप, टीचर और गुरु कहा जाए। करते हैं कोई, किसी ने देखा है यह? कभी कभी बाबा कहते चलो टीचर बन भी जाए, लेकिन गुरु तो कभी नहीं देखा होगा। गुरु बन जाए बाप, ये तो एक ही बाप है और उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, सब याद फिर भी उनको करते हैं और वो बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते। तो वो बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सीख ल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली से। पहला पॉइंट, पांच तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। पांच तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए भी याद बाप को करना है, प्रैक्टिस की पॉइंट है। और कोई भी देहधारी से लागत नहीं रखना है, लगाव नहीं रखना है। सबसे पहले तो खुद का जो देह है, देहधारी तो हम भी है ना, तो लागत नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। लागत होगी, लगाव होगा, मोह होगा, तो फिर दुख भी उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आप खुशी खुशी से सत्युग की तैयारी कर रहे हो, कोई विकर्म नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। ये टेस्ट पेपर तो मैं समझती हूँ सबके सामने आएगा, राइट? और जब आएगा तब पता चलेगा। आगे से हम नहीं ये कह सकते कि हमने तो जीत लिया, लेकिन बाबा को फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, बाबा कहते हैं उस घड़ी के लिए वरदान आज का। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आहुति समझते हैं ना सभी, इन्होंने कैसे यज्ञ में डालते हैं, स्वाहा 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 डालते हैं ना एक एक करके, उसमें भी बाबा कहते हैं संपूर्ण आहुति, सब कुछ लास्ट में जो रहता है ना, सब कुछ डाल देते हैं उसमें। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, धरत परिये धर्म न छोड़िए, सारी धरती ऊपर नीचे हो जाए लेकिन आप अपना स्वधर्म नहीं छोड़ो, राइट? तो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन हमारे धर्म क्या है, लेकिन धारणाएं न छूटे। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, हम देवता बन रहे हैं, नहीं, लेकिन हमारी धारणाएं न छूटे, संकल्प में, बोल में, कर्म में, सब में धारणाएं। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। आकर्षण तब होती है ना जब हमारे एकदम साधारण संकल्प, स्मृति, समर्थि सब साधारण हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए, खुद की कमी कमजोरी खींचते हैं ना, तो वो सब खत्म हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। समारोह माना कि बहुत बड़े रूप में करते हैं ना, संगठन में करते हैं, एक का दो का नहीं होता है, अनेकों का होता है। तो इसलिए बाबा हमारे लिए भी कहते हैं जो परिवर्तन समारोह होगा उसके लिए भी अभी डेट संगठित रूप में निश्चित करो। इस बार का मधुबन हम सबके लिए ये प्रेरणा दे, राइट? तो परिवर्तन समारोह मनाना है, या तो यहाँ मनाकर जाना है या तो जाकर मनाना है, जैसे भी, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। कोई भी छोटी मोटी चीज हमको इधर से उधर से खींचे नहीं, बेकार वस्तुएं बाबा कहते हैं संकल्प में भी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर और जोर पड़ती है उसमें। आज का स्लोगन है रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। और अव्यक्त इशारा आज का, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनो, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत एक बल एक भरोसा और एकता, पहले एक मत एक बल एक भरोसा और एकता, वो भी साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समझा?
ओम शांति। आप सभी को विशेष तबीयत का समाचार सुना रहे हैं। सभी जानते होंगे मुंबई घाटकोपर सब जोन की संचालिका आदरणीय नलिनी बहन जी, आप कुछ दिन से आपकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है और लंग्स में आपको काफी इन्फेक्शन है, इसीलिए प्रिकॉशनरी तौर पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। तो शकू बहन जी की तरफ से विशेष निवेदन हुआ है कि सभी ऐसी विशेष आत्मा जो साकार मम्मा बाबा के द्वारा पालना में पली हुई, और आपकी तो बहुत विशेषता है, सभी ने उनकी मुरली इंटरनेट पर सुनी होगी, बहुत शुरू से वो सुनाते हैं और बहुत विशेष अनुभवी आत्मा है, कई उनकी विशेषताएं हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा के लिए योग में बैठकर हम योगदान देंगे, और बाकी सभी जानते ही हैं अहमदाबाद में हमारे ब्रिजमोहन भाई, वो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, स्लो रिकवरी है, इसलिए सकाश की आवश्यकता तो है ही। और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में हमारे आबू रोड वाले शशि बहन जी मधुबन के वो भी हैं, तो कई अनेक विशेष आत्माएं हैं। हम सभी योग में बैठ करके ऐसी विशेष आत्माओं के लिए शक्तिशाली योग का दान देते हुए सकाश और योग की किरणें फैलाएंगे। और मुरली भी समय से पूरी हो चुकी है, समय है, तो सभी से निवेदन है बैठ करके शक्तिशाली योग करेंगे।